بسم الله الرحمن الرحيم. حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فرمایا کہ حرص لالچ کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے. لالچ کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے، یعنی چونکہ دنیا کی طرف. اچھا، دنیا کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے غافل کر دے، اگرچہ وہ حلال بھی ہے، جیسے دکان حلال ہے لیکن نماز سے اگر غافل کر رہی ہے تو یہ دنیا ہے. تو دنیا کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے غافل کر دے، یہ تو دنیا کی تعریف ہوئی. اور حرص کی حقیقت کیا ہے؟ لالچ کی حقیقت کیا ہے؟ لالچ کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ اور میلان الی الدنیا، یعنی دنیا کی طرف متوجہ ہونا اور دنیا کی طرف میلان ہونا، اور وہ میلان اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ دنیا میں غریق ہو جائے اور غرق ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی وہ حرص اور لالچ اس کو غافل کر دے. اب حکیم الامت فرما رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے. فرما رہے ہیں اگر اس توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے تو یہ توجہ الی الدنیا نہ رہے گی. لہذا یہی وہ بات ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات حکیم الامت کے واسطے سے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جتنے یہ اخلاق جن چیز سے پیدا ہوتے ہیں نا، جو مادے ہیں، جیسے تکبر کا مادہ ہے، عشق کا مادہ ہے، حقیقت میں یہ خود برا نہیں ہے، کیونکہ وہ مادہ ضروری ہے. جیسے زنا کا جو مادہ ہے وہ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا اس لیے فرمایا کہ ان اخلاق کا اور ان بری چیزوں کا یہ ازالہ مطلوب نہیں ہے کہ صاحب شہوت کا تقاضا ہی نہ ہو، غصہ ہی نہ آئے، اور تکبر کا جو مادہ ہے وہ مادہ استغنا میں ضرورت پڑتی ہے اس کی. حرص کا جو مادہ ہے وہ حکیم الامت فرما رہے ہیں اس کو بدل دے، حرص کے مادے کی وہ دین کی میں آگے بڑھنے میں ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو مادہ ہے اس مادے کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا چیز ہے؟ کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کا جو رخ الی الدنیا ہے، جو توجہ اور میلان الی الدنیا ہے، وہ توجہ الی المولا ہو جائے، یہ مطلوب ہے. لہذا عشق کا مادہ ہے، ایک آدمی کے اندر عشق کی کیفیت بہت زیادہ ہے اور اس کی اور وہ اس اپنی کیفیت کو لڑکوں میں عورتوں کی محبت میں استعمال کر رہا ہے. اب کیفیت ہے تو یہ اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیفیت کو ختم کیا جائے، بلکہ اس کیفیت کا رخ بدلا جائے گا. جو توجہ اور میلان الی لیلا ہے وہ توجہ اور میلان الی المولا ہو جائے، الی مولا کی طرف چلے جائے، مولا کی طرف منتقل ہو جائے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ وہ جو جس رفتار سے لیلا کی طرف بھاگ رہا تھا تو شیخ کیا کرتا ہے؟ اس کانٹے کو بدلتا ہے اور اسی رفتار سے وہ مولا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ مطلوب ہے. لہذا وہ جو جس مادے کی وجہ سے وہ بری چیز پیدا ہو رہی ہے تو وہ مادے کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے. جیسے شہوت تو کمال مردانگی ہے، تو اتنی تربیت کی جائے گی کہ شہوت پر ایسا قابو پا لیا جائے کہ وہ غیر اللہ کی طرف نہ جائے اور حلال کی طرف رہے، یہ مطلوب ہے. لہذا اسی کو بات کو سمجھائے کہ اگر کسی کے اندر حرص کا مادہ ہے اور لالچ کا مادہ ہے. چلو اس میں ایک بات اور بھی ہے، تو عورت کے متعلق، لیکن مردوں کو اس پر، یہ مردوں کے لیے بڑا مفید مضمون ہے، حرص کے ہی متعلق ہے. ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کروں، ये अपने ऊपर इसको प्रयास करना है कि मेरा दिल ये चाहता है कि अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहना करूं। अल्लाह ताला ने दे भी रखा है और नियत ये भी होती है कि मेरे शौहर खुश रहे। मर्द खुद नियत करे कि मेरी बीवी खुश हो और मेरे शौहर भी ये चाहते हैं, तो मेरे शौहर भी ये चाहते हैं। मगर मर्ज यह है कि जब किसी औरत को कोई उम्दा कपड़े पहने देखती हूं तो दिल ये चाहता है कि इस किस्म का मैं ले लूं, मैं भी ले लूं। अक्सर तो खामोश रहती हूं मगर कभी फरमाइश भी कर देती हूं और फिर मिल भी जाता है। यानी आप ये देखिए सवाल कितना अजीब है उस औरत की, जिस औरत का ये सवाल है उसकी फहम देखिए आप। ये हकीम उल उम्मत की सोहबत की बरकत है। ये सवाल भी कितना अजीब है, यानी कितना उसने जबरदस्त माशाल्लाह एक चीज को पेश किया। ये हकीम उल उम्मत की सोहबत की बरकत है। फिर सवाल सुने कि मेरा दिल ये चाहता है कि अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनूं और इसका एहतमाम भी होना चाहिए। और अच्छे तो चलो, अच्छे से मुराद अगर बढ़िया है तो बढ़िया तो जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े तो होने चाहिए और एहतमाम हो अपने जिस्म से मैल को दूर करने का। अब चाहे उसके लिए गुस्ल करें या कोई और चीज इस्तेमाल करें, कोई और जरिया करें कि जैसे सर्दी का जमाना है, लेकिन ये जो कपड़ों में बू आती है और पसीने की जो बू है, ये अल्लाह ताला के रास्ते में चलने वालों के लिए बहुत मुज़र है, यानी ये रुकावट है। ये इसलिए साफ सुथरा रहना चाहिए, अजियत होती है। तो क्या कहने लगी कि अल्लाह ताला ने दे भी रखा है और नियत ये भी होती है कि मेरे शौहर खुश रहें और मेरे शौहर भी ये चाहते हैं। गोया के बीवी साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। मगर मर्ज यह है कि जब कोई किसी औरत को कोई उम्दा कपड़े पहने देखती हूं तो दिल ये चाहता है कि इस किस्म का मैं भी ले लूं। अक्सर तो खामोश रहती हूं मगर कभी फरमाइश भी कर देती हूं और फिर मिल भी जाता है, यानी शौहर मुझे दिला भी देता है। अब इस चीज को कपड़ों पर भी और तमाम चीजों पर इसको अप्लाई करना है और मुंतबिक करना है। हजरत का जवाब, सुभान अल्लाह, फरमाया जीनत के दर्जे हैं, जीनत के दर्जे हैं। इफरात और तफरीत मजमूम है, यानी इतना बढ़ गए कि हर वक्त लिबासों के और उसमें। हजरत ने भी इसकी बहरहाल हजरत की जो वजाहत है वो अच्छी है। इफरात यानी ज्यादती होना, तफरीत यानी कमी होना। ये चीज जैसे मर्दों को शिकायत रहती है कि मर्दों की एक शिकायत आम है कि हमारी बीवी जरा बनी सवरी साफ सुथरी नहीं रहती, मैली कुचैली ऐसे ही बस, तो फिर उसकी तरफ रगबत नहीं होती, फिर बाहर देखने को दिल चाहता है। तो ये औरतों की बहुत कमी है, इसको तफरीत कहेंगे। सूरत मस्कूरा में एतदाल ये है। अब हजरत का जवाब सुनिए, सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि हकीम उल उम्मत है। फरमाए सूरत मस्कूरा में एतदाल ये है कि किसी को देखकर उस वक्त कपड़ा मत बनाओ, यानी उसको देखा उसको देखकर बना मत बनाओ। अगर तवक्कुफ करने से जहन से निकल जाए तो फबीहा, यानी बहुत अच्छी बात है। और अगर न निकले तो जिस वक्त नए कपड़ों के बनाने की जरूरत हो तो उस वक्त वही कपड़ा जो पसंद आया हो उसको बना लो। क्या अजीब बात है, यानी ये देखा किसी को फौरन मत बनाओ। अब अगर जहन से निकल जाए तो माशाल्लाह अच्छी बात है, और अगर ना निकले तो जिस वक्त कपड़ा बनाने की जरूरत हो तो उस वक्त वो बना लो। क्या अजीब कायदा। आगे देखिए, अगर इत्तेफाकन उस वक्त न मिल सके तो जाने दो। पता चला जिस वक्त लेना चाह रहे हैं उस वक्त भी नहीं मिला तो रहने दो बस। और अगर देखो कि उस मुद्दत तक तबीयत मशगूल रहेगी। अब दूसरा कायदा देखिए कि जी कपड़ा नहीं बनाया और जरूरत के दर्जा अभी पहुंचा नहीं है और उस वक्त तक तबीयत उसमें मशगूल रहेगी, बार बार याद आता रहेगा, तो क्या फरमा रहे हैं? अगर देखो कि उस वक्त तक तबीयत मशगूल रहेगी तो पसंद के वक्त खरीद कर रख लो मगर बनाओ मत। एक एक जुमला कैसा अजीब नहीं है कि पसंद के वक्त खरीद कर रख लो मगर बनाओ मत, बनाओ उस वक्त जब बनाने की जरूरत हो। क्या अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। क्यों अब फरमा रहे हैं, ताकि उसके इवज का कपड़ा बच जाए, कि शौक भी पूरा हो जाए और इक्तिसाद यानी मईशत भी फौत ना हो, जरूरत भी फौत ना हो, कि जरूरत के वक्त अब वो कपड़ा मौजूद है उसको बना लो। अब ये आगे देखिए, और अगर तुम्हारा शौहर तुमको अलावा जरूरी नान नफ्ते के जेब खर्च के वास्ते कुछ देते हैं, तो फिर इस इंतजाम में इतना और इजाफा कर लो कि ऐसा कपड़ा अपनी जेब खर्च की रकम से खरीदो, ताकि नफ्स हुदूद में महसूर रहे। यानी यहां नफ्स को पाबंद किया, क्योंकि ज़ाहिर बात अपना जेब खर्च इतना नहीं होगा, या अगर होगा भी तो फिर उसको अपने ऊपर ग्रां गुजरेगा ना। ये क्या हर चीज को शौहर के ऊपर लाद दिया। सुभान अल्लाह, क्या अजीब है बताइए। हकीम उम्मत की बात, कि गोया के जब किसी कोई चीज किसी के पास देखे कि जी वो है, तो ये नहीं कि बस हर चीज ले ली, बस ये भी ले लो ये भी ले लो। हजरत यही समझा रहे हैं कि वो अगर देख लो तो बस लो मत, यही नफ्स का इलाज है, अगर जो वो तकाजा करे, और जिस वक्त जरूरत हो तो वही वाला ले लो, वही वाला मोबाइल ले लो। लेकिन मोबाइल में ये कायदा नहीं चलेगा, ये नहीं कि वो खरीद के रख लिया, फैम चाहिए ना, कि जिस वक्त जरूरत होगी वो करेंगे, या मोबाइल में ये कायदा नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल अक्सर जगह पर ये बात चलेगी, खुसूसन कपड़ों के लिए तो है ही, और ये मर्दों के लिए भी है। कपड़े हैं, जूतियां हैं, दूसरी चीजें बस देख देख कर उसकी तरफ मशगूल हो जाते हैं, और दूसरी चीजों को देख की तरफ, उस तरफ देख कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, यही वो, ये भी गोया के एक हिर्स की और लालच की एक चीज थी। तो बहरहाल हकीम उम्मत ये समझा रहे हैं कि कायदा यह है कि अगर हिर्स हो तो वो जो हिर्स की हकीकत मैलान इलत दुनिया है, लिहाजा उस मैलान को बदलो, और उस मैलान को बदलो, और उसके बदलने का तरीका यही है कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, अल्लाह वालों की सोहबत में रहे। तो उस मैलान को दीन बनाने का, लिहाजा उसमें नफ्स को एक तो ये होगी कि नफ्स को रोकना भी होगा, और दूसरी तरफ उस मैलान को बदलना होगा। जैसे कोई चीज खरीदने को दिल चाह और वो जरूरत भी नहीं है, राहत भी नहीं है, सिर्फ इसराफ है, तो उतना पैसा जो उस चीज के खरीदने में लगता, उस पैसे को किसी के रस्ते, किसी दीन के रस्ते में लगा दो, दीन की किताबें खरीदने में लगा दो। एक मर्तबा नफ्स के साथ ऐसा कर ले, नफ्स बंदे दा पुत्र बन जाएगा। यानी अगर मान लो 5,000 रुपए का मोबाइल खरीदने को दिल चाह रहा है ना, तो 5,000 रुपए रख दे, शेख के हाथ पे रख दे कि लो इसको दीन में खर्च करो, इंशाल्लाह आइंदा 5,000 क्या 2,000 का मोबाइल भी खरीदने को दिल नहीं चाहेगा। एक मरतबा करके देखे, एक मरतबा करके देख ले कि पैसा जमा करके और उसके बाद शेख के हाथ पे रख दे कि ये दीन के किसी काम में लगा दे। जिनके काम हाथ में रखने से असल में डबल फायदा होगा, वहां पे नफ्स कहीं ना कहीं डंडी मारेगा ना, वहां पे नफ्स कहीं ना कहीं डंडी मारेगा, शेख के हाथ में रख देगा ना, तो फिर नफ्स की जो डंडी है ना वो बिल्कुल अंडी हो जाएगी, फिर मजाल नहीं है कि हिल के दिखाए वो, हाथ में एक दफा रख दे फिर देखे। इसलाह तो भाई इसी तरह होती है, इसलाह तो इसी तरह होती है। अल्लाह ताला अपने करम से हमारे कुलूब को नूर अता फरमाए, और हमारे नफूस का तज़किया फरमाए, और हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो दर्द है, जो हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह हकीम उम्मत के खुलफा और हकीम उम्मत के मुरीदीन फरमाया करते थे, ये बात कि जब हम खानकाह में आते हैं तो हमें थाना भवन याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि थाना भवन की दौलत वहां से मिल रही थी ना, वहां से तकसीम हो रही थी, اس وجہ سے حکیم الامت کے خلفاء نے یہ بات فرمائی, جس میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, دوسرے حضرات نے بھی اس بات کو فرمایا. حکیم الامت کے خلیفہ جو کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے, وہ حضرت کو لے کر گئے اور حضرت سے فرمائی یہ بات, وہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے, انہوں نے حضرت سے بات فرمائی کہ مجھ کو یہ امید ہے کہ آپ کی وجہ سے بنگلہ دیش میں حکیم الامت کا مسلک زندہ ہو جائے گا. اب آپ بتائیے حکیم الامت کا خلیفہ یہ بات فرما رہے ہیں, اور یہی ہوا, یہی ہوا ماشاء اللہ. بنگلہ دیش میں, پورے بنگلہ دیش میں حضرت کے کتنے خلفاء, پھر اور ماشاء اللہ کیا کیا مجالس ہوتی تھی. حضرت نے تو اس زمانے میں 80 کا زمانہ تھا, بڑی محنت فرمائی, اور وہی ہوا کہ حکیم الامت کا مسلک ماشاء اللہ وہاں زندہ ہو گیا. اب بتائیے حکیم الامت کا خلیفہ یہ بات فرما رہے ہیں, ایسے اللہ نے یہ دولت دی. اللہ تعالیٰ ان اکابر کا درد دل ہماری جانوں کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.